मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 10 अगस्त 2017 है और आज के इस AFEIS.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर के मुख्य विषय के रूप में हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा भारत छोड़ो आंदोलन के ऊपर, लेकिन मैं सीधे सीधे भारत छोड़ो आंदोलन पर ही बात नहीं करूंगा। मैं भारत छोड़ो आंदोलन के माध्यम से इस रूप में बात करूंगा कि आप जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन है उसे सिविल सर्विस के लिहाज से कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे, और उसी के केंद्र में होगा भारत छोड़ो आंदोलन। तो इससे पहले कि हम उस पर बात शुरू करें, आइए थोड़ा सा हम न्यूज देख लेते हैं। फ्रेंड्स, न्यूज में केवल दो ही मुझे महत्वपूर्ण बातें लग रही हैं। रेडियो न्यूज आप लोगों ने सुनी ही होगी जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बातें थी, और डीडी न्यूज पर तो काफी भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में हमारे अभी जो नेता हैं संसद में क्या क्या कहा गया, थोड़ी सी पृष्ठभूमि, थोड़ी सी बातचीत वगैरह डीडी न्यूज पर दिखाई गई थी। जो मुझे सिविल सर्विस की दृष्टि से जो सबसे इम्पोर्टेंट जो खबर पूरे के पूरे रेडियो न्यूज में लगी 15 मिनट की खबर में, वो है मित्रों प्रधानमंत्री का कलेक्टर्स के साथ सम्मेलन, कलेक्टरों को संबोधन कह देना करना चाहिए, जो उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हमारे देश भर के जो जिला कलेक्टर होते हैं उनको संबोधित किया। ये पहली बार ऐसा हुआ है जब इस अवसर पर प्रधानमंत्री सीधे सीधे जिला कलेक्टर्स को संबोधित कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि अब मीडिया ने जो हमें सुविधा उपलब्ध करा दी है, जो कम्युनिकेशन रिवोल्यूशन हुआ है, उसका ये कमाल है कि प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठ करके और सभी जिला कलेक्टरों से रूबरू बात कर रहे हैं, आमने सामने ऐसा लग रहा है कि वो बात कर रहे हैं। फ्रेंड्स, जो न्यूज में जो बातें थी, देखिए उसमें उन्होंने क्या बातें की और आप सिविल सर्विस के लिए इसे कैसे इम्पोर्टेंट मानेंगे। मुझे लगता है कि चूंकि प्रधानमंत्री जी ने पहली बार इस ऐसे मौके पर, क्योंकि जो 75वीं वर्षगांठ है भारत छोड़ो आंदोलन की, इसे आप एक पवित्र अवसर कह सकते हैं, है ना, बहुत ही एक्सक्लूसिव और ऐतिहासिक अवसर कह सकते हैं, और ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर उन्होंने कलेक्टर्स से बातचीत करने का निर्णय लिया है। इसका मतलब है कि ये बहुत बड़ा निर्णय है, ऐसा नहीं कि अचानक मन में आ गया कि मुझे बात करनी है और बात करना है। इसका एक बहुत ही जबरदस्त प्रतीकात्मक अर्थ है, संदेश है, और वो ये है कि जो हमारा जो पूरा का पूरा जो चाहे वो डेवलपमेंट हो देश का, चाहे विकास हो या कानून और व्यवस्था की स्थिति हो, दो हम मेन मान करके चलते हैं, विकास और कानून और व्यवस्था की स्थिति, इनके केंद्र में यदि कोई है तो वो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, जो जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रशासन की तरफ से जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो रूट लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर काम करते हैं, लोगों से सीधे संपर्क में रहते हैं, और वो जो जिला है उसके प्रमुख के रूप में वहां लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी को संभालते हैं, और साथ ही साथ चूंकि हमारा वेलफेयर स्टेट है, हम डेवलपिंग नेशन है, तो वो विकास पर भी ध्यान देते हैं। जैसे अंग्रेजों के समय के कलेक्टर्स को आप उठा करके देखेंगे कि उनकी क्या भूमिका थी, तो वो ज्यादातर लॉ एंड ऑर्डर पर काम करते थे, उनका सबसे बड़ी भूमिका यही थी, लॉ एंड ऑर्डर करना। और जो कलेक्टर शब्द आया है वो कलेक्शन से ही मतलब है, जब ब्रिटिश का जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था तो वो टैक्स कलेक्शन का काम करते थे, तो उस समय आर्थिक दायित्व तो उनके पास ज्यादा थे, अब डेवलपमेंट के काम है और लॉ एंड ऑर्डर के काम है। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री जी ने सीधे उनसे बात करने की कोशिश की है, बात की है जो सीधे ग्रास रूट लेवल पर काम कर रहे हैं। उसमें देखिए उन्होंने दो तीन बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही हैं जो न्यूज में थी, है ना, न्यूज़पेपर्स में और है, उसकी डिटेल्स भी है, आप न्यूज़पेपर्स भी देख लेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने कलेक्टर्स से और क्या एक्सपेक्ट किया है। जो कुछ भी उन्होंने कहा है, जो भी एक्सपेक्ट किया है, मैं समझता हूं कि उन सारे बिंदुओं को लेकर के जो कलेक्टर्स की आज की हमारी भूमिका है, जो उनके दायित्व हैं, उनके जो अधिकार हैं, उनकी जो स्थितियां हैं, उनको जो और जरूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, या कलेक्टर के पद में और क्या सुधार होना चाहिए, या हमारे प्रधानमंत्री जी जो चाह रहे हैं कि कलेक्टर्स अपने इस भूमिका का निर्वाह करें, तो क्या हमारे जो कलेक्टर्स हैं उसके लिए इक्विप्ड हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कुछ अलग तरीके के दबाव में काम कर रहे हैं, या उनके पास काम का दबाव इतना ज्यादा है कि वो डेवलपमेंटल वर्क में समय दे ही नहीं पा रहे हैं। इन सारे मुद्दों पर आपको एक अच्छी तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि देखिए जो सिविल सर्वेंट की जो भूमिका है आपके जनरल स्टडीज मेंस में के सेकंड पेपर में वो बाकायदे दिया हुआ है और उस पर प्रश्न भी पूछे जाते हैं। सिविल सर्विसेज के बारे में एक प्रश्न हर साल आ जाता है, तो मुझे लगता है कि इस बार कलेक्टर्स पर प्रश्न पूछे जाने की संभावना बन सकती है। अब आप देखिए कि उन्होंने दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कही। नंबर एक कि आप एक दृष्टिकोण दस्तावेज तैयार कीजिए, समाधान पत्र तैयार कीजिए, है ना, एक विजन ड्राफ्ट कीजिए कि इस गांव में, मतलब उनका जो अपना आपका जो जिला है उस जिले में क्या किया जाना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए, और फिर उसका समाधान पत्र भी तैयार कीजिए। क्या किया जाना चाहिए केवल यही बात नहीं, इसे कैसे किया जा सकता है। कहीं किसानों की समस्या है, कहीं कुपोषण की समस्या है, कहीं रोजगार की समस्या है, कहीं लॉ एंड ऑर्डर की ही सबसे बड़ी समस्या है, कहीं गरीबी समस्या है, कहीं स्वास्थ्य सबसे बड़ी समस्या है। तो उन्होंने कहा कि आप 2022 के लिए कम से 10 से 15 लक्ष्य निर्धारित कीजिए। यहां भी 2022 से देखिए, है ना, 5 साल कि 2022 में इस डिस्ट्रिक्ट में हम ये अचीव करेंगे। यह उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात कही है, क्योंकि इसका संबंध सीधे सीधे डेवलपमेंट से है, है ना। और हम जितनी चीजें देख रहे हैं कि भारत छोड़ो, गरीबी भारत छोड़ो, गंदगी भारत छोड़ो, कहीं ना कहीं ये सब डेवलपमेंट के ही हिस्से हैं। ये बात उन्होंने स्पेशली कही। दोस्तों अब ये उन्होंने ये बात कह दी, अब आपसे ये नहीं पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में कि प्रधानमंत्री जी ने उनसे क्या करने के लिए कहा था। ये जरूर पूछा जा सकता है कि जो ये हमारे राष्ट्र की जो अपेक्षा है कलेक्टर्स से, ये अपेक्षाएं हो गई, क्या हमारे कलेक्टर्स उसके लिए पूरी तरह से इक्विप्ड हैं, यानी कि उनको जो दायित्व दिए गए हैं, जो उनको हथियार उपलब्ध, हथियार तो नहीं कहना चाहिए, जो उनको साधन मुहैया कराई गई हैं, क्या उनको देखते हुए वास्तव में कलेक्टर्स ये काम करने में सक्षम दिखाई दे रहे हैं, और अगर नहीं दिखाई दे रहे हैं तो क्या किया जाना चाहिए, ये आपकी जानकारी में होनी चाहिए। इस पर आप तैयारी कीजिए, बहुत ही प्रैक्टिकल लेवल पर आपको तैयारी करनी होगी। कलेक्टर्स पर काम का किस तरह का दबाव है, राजनीति के क्या दबाव हैं, किस तरह के उलझाव हैं, इन सब पर भी आपको व्यावहारिक जानकारियां होनी चाहिए। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स की जो कलेक्टर वाला जो टॉपिक है इस साल के सिविल सर्विस के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको तैयारी कर लेनी चाहिए। वैसे तो ये टॉपिक इतना बड़ा है कि कितनी भी देर बात की जा सकती है, लेकिन उसका कोई विशेष अर्थ नहीं होगा। मित्रों अगर आपने डीडी न्यूज भी देखी हो तो आप देखेंगे कि डीडी न्यूज में एक अच्छा डिस्कशन था, बातचीत की जा रही थी, और उसमें था गवर्नमेंट की अभी तक की क्या अचीवमेंट्स रही है 3 साल की, खासकर अभी जो हमारी सरकार है उसके 3 साल के क्या अचीवमेंट्स रहे हैं, तो योजनाओं पर बात की गई है। मुझे लगता है कि जब इस तरह के कोई भी टॉपिक किसी भी मीडिया पर आए, चाहे वो अखबारों में हो, दूरदर्शन पर हो, या रेडियो में कोई वार्ता आ रही हो, तो आपको जरूर अपना समय इसके लिए निकालना चाहिए। योजनाएं क्या हैं, उनके रिव्यूज क्या हैं, हमें उनमें कितनी सफलता मिल रही है, कितनी सफलता नहीं मिल पा रही, नहीं मिल पा रही है तो क्यों नहीं मिल पा रही है, इसके क्या इम्पैक्ट दिखाई दे रहे हैं, ये ऐसे एंगल्स हैं जिन एंगल्स की जानकारी आपको बड़े रियलिस्टिक तरीके से होनी चाहिए। रियलिस्टिक इन द सेंस कि ये नहीं कि आप केवल अपने मन से जोड़कर कुछ भी कह दें। देखिए अगर मन से जोड़कर कहेंगे तब भी ये सब बातें कुछ ऐसी होती हैं जो बहुत गलत नहीं होती हैं, उसमें तीर तुक्का लगी जाता है और कुछ ना कुछ सही ही बातें होती हैं, लेकिन देखिए जो एग्जामिनर है वो बिल्कुल अच्छे से समझ लेता है कि कहां आपसे चूक हुई, आप किस आधार पर लिख रहे हैं, आप उतने कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी के साथ नहीं लिख पा रहे हैं। लेकिन जब आप लगातार इस तरह के प्रोग्राम सुनते रहेंगे, आर्टिकल्स पढ़ते रहेंगे, तो डेफिनेटली आपके दिमाग में तर्क शक्ति आएंगी, तथ्य आएंगे, और तब जब आप अपनी बात कहेंगे तो वो बात की बात ही कुछ अलग होगी। तो आपने देखा होगा आप डीडी न्यूज पर उज्ज्वला योजना की बात हुई, जनधन योजना की बात हुई, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हुई, इस तरह के जो भी अभी लेटेस्ट योजना मेक इन इंडिया की बात हुई, जो भी योजनाएं महत्वपूर्ण हैं उनकी चर्चा हुई थी, तो कम से कम इसी बहाने रिविजन हो जाता है कि हाँ क्या है, राइट। तो मित्रों ये थी न्यूज, आज के न्यूज की बात। अब मैं आता हूं भारत छोड़ो आंदोलन पर। मेरे पास आज एक बहुत अच्छा फैक्ट्स ऑफ द डे भी था, लेकिन वक्त ज्यादा हो गया है, मैं उस पर कल चर्चा करूंगा। फैक्ट्स ऑफ द डे अगर हो सका तो कल मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, तो नहीं कर पा रहा हूं फिलहाल, आज नहीं दे पा रहा हूं, इसके लिए माफी चाहूंगा। तो दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन, देखिए नो डाउट कि 75 ईयर्स हुए हैं, तो एग्जामिनेशन की दृष्टि से वो महत्वपूर्ण चैप्टर हमारे इतिहास का है और एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण हो गया है। लेकिन कभी कभी, जैसा कि मैं कल बता चुका हूं, यह भी होता है कि जिन बातों की बहुत चर्चा हो जाती है या बहुत स्टूडेंट एक्सपेक्ट करने लगते हैं तो एग्जामिनेशन में उस पर पूछा भी नहीं जाता है, राइट। लेकिन हम इसी आधार पर यह लिबर्टी नहीं ले सकते कि हो सकता है न पूछा जाए। फ्रेंड्स, आपके मेंस में तो फ्रीडम मूवमेंट ही ज्यादातर है, हिस्ट्री का जो दूसरा पार्ट है आप देखेंगे वो खासकर साहित्य, कला, संस्कृति वाला ही हिस्सा है। अगर हमें एंशियंट इंडिया से लेकर के मॉडर्न इंडिया तक के बीच के हिस्से को लें तो आप चाहे प्री के पेपर उठाकर देखें या मेंस के देखें तो उसमें कला, साहित्य, संस्कृति वाले हिस्से से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, वो भी इतिहास का ही पार्ट होता है। बाकी जो क्वेश्चंस आते हैं ज्यादातर, चाहे प्री हो मेंस हो, वो ज्यादातर क्वेश्चंस हमारे फ्रीडम मूवमेंट से ही होते हैं और भारत छोड़ो आंदोलन उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आप फ्रीडम मूवमेंट पर पूछे गए प्रश्नों को उठाकर देखिए, अनसॉल्व पेपर की मैं बात कर रहा हूं। प्री में तो कुछ क्वेश्चंस सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं या थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप उनके उत्तर दे लेंगे, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग पर दे लेंगे। मैंने देखा है कि फ्रीडम मूवमेंट पर प्री में बहुत गहराई से या बहुत ही घुमावदार प्रश्न नहीं किए जाते, एक दो कभी कोई प्रश्न पूछ लिया गया हो तो बात अलग है, लेकिन ज्यादातर प्रश्न स्ट्रेट तो नहीं होते हैं, फिर भी एक सामान्य से अंडरस्टैंडिंग के आधार पर भी आप उन्हें हल कर सकते हैं। लेकिन जो मेंस के क्वेश्चन होते हैं वो आपसे केवल अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं की डिमांड नहीं करते बल्कि एक व्यापक अंडरस्टैंडिंग की डिमांड करते हैं। व्यापक अंडरस्टैंडिंग की डिमांड ये कि आपसे वो हिस्ट्री की एक क्रिटिकल एनालिसिस चाहते हैं, मतलब वो ये जानना चाहते हैं कि इतिहास की दृष्टि आप में है कि नहीं है, एक ऐतिहासिक समझ है कि नहीं है। देखिए, इतिहास एक तो घटनाएं हैं, भारत छोड़ो आंदोलन तो एक घटना है, क्यों हुई, कैसे हुई, क्या क्या हुआ, इसका क्या प्रभाव पड़े, ये सामान्य इतिहास है जो हम किताबों में पढ़ते हैं, किताबों में पढ़ने के बाद परीक्षा में उसी तरह से पूछ भी लिए जाते हैं और हम उत्तर भी लिख करके आते हैं। लेकिन सिविल सर्विस इसको बिल्कुल अलग तरीके से लेकर चलता है दोस्तों। जैसे एक प्रश्न पूछा गया, आप शायद इसके आधार पर समझ सकें कि बिना महात्मा गांधी अगर नहीं होते हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में तो हमारे स्वतंत्रता का स्वरूप क्या होता, कुछ इस तरह का प्रश्न पूछा गया था, उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा एग्जैक्ट, लेकिन सेंस लगभग यही था। अब आप देखिए कि इस पर अब आपको कहां मिलेगा पढ़ने को, मैंने तो आज तक नहीं पढ़ा। देखिए, मेरे तो सिविल सर्विस में हिस्ट्री सब्जेक्ट रहा है, ठीक ही ठाक है, और मेरा बड़ा प्रिय विषय भी है इतिहास, अभी भी मैं इतिहास की किताबें मिल जाती हैं, अब टेक्स्ट बुक नहीं लेकिन दूसरी जब किताबें मिल जाती हैं तो मैं पढ़ना पसंद करता हूं। लेकिन मुझे कहीं ये नहीं मिला कि अगर गांधी जी स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व नहीं कर रहे होते तो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का स्वरूप क्या होता। अब आप देखिए कि अब आप इसका आंसर कैसे देंगे, बिल्कुल अलग तरीके से अब आपको इसका उत्तर लिखना पड़ेगा। तो उत्तर कहां से लाएंगे, अब आपको पूरे के पूरे स्वतंत्रता आंदोलन का हमारा जो स्ट्रक्चर रहा है, जो करेक्टर रहा है, उसको समझ करके फिर अपनी बात लिखनी है और वो भी केवल 200 शब्दों में। तो मित्रों, तो अब आप भारत छोड़ो आंदोलन पर तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आपको सब कुछ मालूम है कि भारत छोड़ो आंदोलन की क्यों शुरुआत हुई, आपको अच्छे से मालूम है, जब शुरुआत हो गई तो फिर अंग्रेजों ने क्या क्या किया, इसके बाद इसके क्या प्रभाव पड़े। जनरली हम किसी भी टॉपिक को इन्हीं 3-4 पॉइंट्स के आधार पर तैयार करते हैं। लेकिन मान लीजिए कि प्रश्न पूछ लिया जाता है, गांधी जी के पैटर्न की मैं बात कर रहा हूं, कि यदि देश में भारत छोड़ो आंदोलन नहीं हुआ होता तो हमें आजादी मिलने में कितना टाइम लगता, यानी क्या 47 में मिल जाती या नहीं मिलती आजादी, और लंबा खींच जाता या क्या होता। अब आप देखिए कि इस ये है बिल्कुल इंपैक्ट को लेकर के ही बात की जा रही है, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन जब भारत में हुआ तो अंग्रेज बड़े चिंतित हो गए कि अरे बाप रे ये क्या हुआ। लेकिन क्या अगर नहीं ये आंदोलन छिड़ा होता तो जो 15 अगस्त 1947 में हमें आजादी मिली, क्या वो आजादी 1950 तक चली जाती, 2 साल और बढ़ जाती, या कि उसे एकदम पहले ही मिल जाती। पहले मिल जाने का सेंस है, देखिए सेकेंड वर्ल्ड वार जो 1939 में शुरू हुआ था 1945 में खत्म हो गया, और इस बीच में जो ब्रिटिश के और जो उसके साथी थे अमेरिका वगैरह, ये शुरू में तो काफी हार ही रहे थे। जर्मनी, इटली और जापान के सामने वो नहीं टिक पा रहे थे, तो इनकी आर्थिक स्थिति भी बड़ी खस्ता हो रही थी। और फिर दबाव भी अमेरिका का लगातार ब्रिटेन वगैरह पर पड़ रहा था कि आप उपनिवेश को आजाद कीजिए, तो वो दबाव तो था। तो अगर भारत छोड़ो आंदोलन नहीं होता तो क्या सेकेंड वर्ल्ड वार के खत्म होते ही हमें आजादी मिल जाती, या क्या 47 की जगह हमें 48 में मिलती या नहीं ही मिलती? तो इस तरह के जो उत्तर होंगे आप कहां से लाएंगे, ये एक चुनौती है दोस्तों। उसी के लिए मैं आपको सतर्क कर रहा हूं कि जब भी आप स्पेशली फ्रीडम मूवमेंट पर जब पढ़ें, फ्रीडम मूवमेंट पर, तो आप अपने अंदर एक सेंस डेवलप करने की कोशिश करें। जैसे मान लीजिए इसी भारत छोड़ो आंदोलन की हम बात करें, तो हम यही एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1857 के बाद भारत छोड़ो आंदोलन भारत का दूसरा सबसे बड़ा जन आंदोलन था, क्या आप इससे सहमत हैं, या सिद्ध कीजिए कि था, आपकी सहमति या सहमति नहीं मान रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि था। अब आप 1857 के आंदोलन को देखिए और इसके बाद 1942 के आंदोलन से इसकी तुलना कीजिए और फिर बताइए कि उसी तरह का था, या परिणाम को ले लिए जाए कि 1857 के आंदोलन के बाद जो भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में अंग्रेजों के द्वारा जो परिवर्तन किए गए, क्या इसी तरह के परिवर्तन 1942 के आंदोलन के बाद भी किए गए, आपको दिखाई देते हैं? या ये भी पूछा जा सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का स्वरूप अपने पूर्ववर्ती आंदोलनों से किस प्रकार भिन्न था। तो मतलब कहने का जो अर्थ है मित्रों मेरा, केवल यही है कि आपको केवल किताबों तक सीमित नहीं रहना है, आपको उसे इनलार्ज करना है, इतिहास को पचाना है, अपने अंदर रमाना है, यानी कि इतिहास की एक समझ विकसित करनी है ताकि जो प्रश्न पूछे जाएं उनके आप उत्तर दे सकें। आप अनसॉल्व्ड पेपर उठा करके देखें, जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, मैं मेंस की बात कर रहा हूं, आपको उनके उत्तर सीधे सीधे आपको किताबों में नहीं मिलेंगे, और जब किताबों में ही नहीं मिलेंगे तो आप नोट्स भी क्या बनाएंगे। लेकिन उत्तर किताबों में ही है, वो खोए हुए हैं, वो बिटवीन द लाइन्स हैं, वो पढ़ करके आपको उनके उत्तर अपनी तरफ से क्रिएट करने पड़ेंगे, अपनी तरफ से बनाने पड़ेंगे। यूं कह लीजिए कि छोटे से अर्थों में, संक्षिप्त शब्दों में, थोड़ी देर के लिए आपको स्वतंत्रता आंदोलन का एक सामान्य सा इतिहासकार बनना पड़ेगा कि आप अपनी तरफ से उस चैप्टर को लिख रहे हैं, समझने के बाद लिख रहे हैं, बस दैट्स ऑल। तो मित्रों ये मुझे कुछ बातें भारत छोड़ो आंदोलन के जरिए आपसे करनी थी। अब मैं आता हूं आज के न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स पर। दोस्तों मैं दो न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स के बारे में आपको विशेष रूप से आगाह करना चाहूंगा। एक बिजनेस स्टैंडर्ड की प्रेस क्लिपिंग्स है जिसमें शिक्षा की स्थिति के बारे में एक रिपोर्ट आई है और कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, प्लीज आप सब उसे जरूर देखें। और एक प्रेस क्लिपिंग से ये इंडियन एक्सप्रेस की है जिसमें खासकर जो सिविल सर्विसेज हैं आईएएस खासकर, उसमें लेटरल एंट्री की बात कही है, यानी कि बाहर से लोगों को लाकर के उसमें शामिल किए जाने की बात कही गई है। उस पर एक लेख है, मुझे लगता है कि चूंकि आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि किस तरह की सोच अब हमारे देश में सिविल सर्विसेज में सुधार को लेकर के चल रही है। ये दो आर्टिकल्स में विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा, बाकी दूसरे आर्टिकल्स भी हैं, आप सब अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से देख लेंगे। तो मित्रों अब मैं आता हूं अंतिम चरण पर, और यह अंतिम चरण है नौजवान साथियों के स्वागत करने का चरण। तो मैं स्वागत करता हूं अपने उन तीन नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की अक्टूबर नवंबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं राम बाबू कुमार राम, आप चंपारण बिहार से हैं, मकवाना कृपा, आप जूनागढ़ गुजरात से हैं, और धनंजय नायक, आप जगत सिंहपुर उड़ीसा से हैं। तो आप तीनों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और दोस्तों इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करने की इजाजत भी चाहता हूं। नमस्कार।